मेरे अभिन्न दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे न्याय का भारतीयकरण इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ थोड़ी सी जो दूसरी सामान्य सी भले को लेकिन खबरों को देख लेते हैं। कल के रेडियो न्यूज़ में आपने एक संस्थान के समारोह में जो वर्चुअली तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे, उसमें श्री नारायण गुरु का नाम सुना होगा। श्री नारायण गुरु, मुझे लगता है कि श्री नारायण गुरु के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये केरल के रहने वाले थे और एक तरीके से सामाजिक सुधारक, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त रूप से सम्मान है। ये लगभग लगभग आप कह लीजिए 1900 के आसपास हुए हैं। मैं जानबूझकर के 1900, सन 1900 की बात कर रहा हूँ। सामान्यतः 1856 में इनका जन्म है, 1928 में इन्होंने अंतिम सांस ली और केरल के रहने वाले थे। तो इनका पीरियड आप देखिए कि सन 1900 के आसपास, यानी कि यह वह समय था जब भारत में एक तरीके से जो रिनेशा था वो अपने बिल्कुल क्लाइमेक्स पर था, जिसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने बकायदे ब्रह्म समाज की स्थापना से कर दी थी। और इसके बाद से सामाजिक सुधार के जबरदस्त किस्म के आंदोलन हमारे देश में शुरू होते हैं। आर्य समाज आता है, प्रार्थना समाज आता है, इस तरह के ढेर सारी संस्थाएं खुलती हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स सामने आते हैं। क्योंकि इन लीडर्स को लगने लगा था कि अगर भारत का आधुनिकीकरण किया जाना है और उसे लोकतांत्रिक आंतरिक चेतना के लायक बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि इसकी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे इसे छुटकारा दिलाया जाए। तो उसके दोनों पक्ष थे, एक धार्मिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन हो रहे थे, खासकर जो आर्य समाज है वो इसको लेकर के चल रहा था, दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्रों में भी इसके लिए काम किया जा रहा था। यानी इसमें बहुत सारे नाम हैं और उसी में एक नाम है श्री नारायण गुरु का। विशेषकर नारायण गुरु जाति प्रथा के खिलाफ बहुत जबरदस्त रूप से आगे आए, जाति प्रथा के खिलाफ। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नारा दिया था जो इनके नाम से जाना भी जाता है, और वह है वन कास्ट, यानी कि एक ही जाति होती है, वन रिलीजन, एक ही धर्म होता है, एंड वन गॉड टू मैनकाइंड, और मनुष्य की जो जाति है उसका केवल एक ही ईश्वर है। यानी कि एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है और एक ही जाति है। और बकायदे इसके लिए इन्होंने काफी जबरदस्त रूप से काम किया। तो मेन रूप से जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़ने में जो श्री नारायण गुरु का नाम है वो एक तरीके से सर्वोपरि नाम है। आपके एनसीईआरटी में भी बकायदे चैप्टर हैं जो हमारे यहाँ समाज सुधार के जो आंदोलन हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री एग्जामिनेशन और मेंस दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें। जहाँ तक श्री नारायण गुरु के ऊपर प्रश्न पूछे जाने की बात है, तो देखिए प्री का तो जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अभी जो जून में एग्जाम होने हैं, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि खासकर इसके आधार पर कि प्रधानमंत्री जी ने कल उनका नाम लिया है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, कल के अखबारों में भी ये खबर थी और आज के अखबारों में थोड़े से विस्तार के साथ है कि जो फ्रांस में चुनाव हुए थे तो जो राष्ट्रपति मैक्रों हैं वो फिर से चुनाव जीत गए हैं। इनका नाम अभी आपने खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी कुछ पढ़ा होगा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध न हो, और जब युद्ध शुरू भी हो गया तब भी इनकी काफी कोशिश रही कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। ये बकायदे यात्रा पर गए और जो यूक्रेन के जनरल्स की हैं उनसे इन्होंने बात भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफलता नहीं मिली। तो इस दौरान जो मैक्रों का नाम था वो काफ़ी चर्चा में आया था, लेकिन हमारे लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये नाम किस तरीके से उपयोगी है, या यूँ कह लीजिए कि उनका जीतना कैसे मायने रखता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से, तो बस थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। मैक्रों के खिलाफ जो दूसरी लीडर थी वो उनका नाम है ली पेन। खासकर उन्हें धूर दक्षिण पंथी नेता माना जाता है। जब हम कहते हैं धूर दक्षिण पंथी, जो कि दक्षिण पंथी राइटिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जाति, इन सबको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने धर्म, तो उन्हें हम एक तरीके से राइटिस्ट मान लेते हैं। दूसरा जो वर्ग होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, जो प्रगतिशील वर्ग कहलाता है। लेकिन जब आप धूर दक्षिणपंथी कहते हैं तो धूर शब्द की जगह आप कट्टर शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए कि कट्टर दक्षिणपंथी ये पराजित हुई। ठीक है, इन्हें पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ज्यादा वोट मिले, लेकिन खासकर मैक्रों की जीत से पूरा यूरोप खुश है, खासकर इस दृष्टि से कि क्योंकि ये माना जाता है कि लिपेन जो थे वो रूस की समर्थक थी, रूस के समर्थन में थी। सोच करके देखिए कि अगर ये जीत जाती तो स्थिति क्या होती। लोगों का ये कहना है कि फिर फ्रांस ये कोशिश कर सकता था कि हम नाटो से अलग होंगे, जैसे आपके एक प्रकार से ब्रिटेन ब्रेग्जिट कर गया, बकायदे यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो फ्रांस भी आगे चल करके ऐसा कर सकता था। और फ्रांस खासकर यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, तो बस इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से इसका इतना ही महत्व है। भारत के संबंध मैक्रों के समय में फ्रांस के साथ बहुत बेहतर हुए हैं, और आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप जाने वाले हैं, तो इस दृष्टि से भारत भी खासकर मैक्रों की जीत को एक प्रकार से सकारात्मक रूप में देख रहा है। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इन पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते कि बिल्कुल पूछ ही लिया जाएगा भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर के, ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ हमारे जो जितने संबंध निकट के हैं और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उतना मायने भारत और फ्रांस के संबंध नहीं रखते। जैसे आप देखिए कि इस बीच में भारत और जापान के संबंध बहुत गहरे हुए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध गहरे होने जा रहे हैं, भारत और ब्रिटेन के संबंधों में भी कहा जा रहा है कि एक नई जान आने वाली है, तो उन्हें देखते हुए तो फिर भारत और फ्रांस के संबंध कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे तथ्य हैं, इनकी खूबसूरती यह होती है कि आप इनका इस्तेमाल जब दूसरे देशों के साथ संबंधों के बारे में कर रहे हैं तो आप वहाँ डाल सकते हैं, और इससे डेफिनेटली एग्जामिनर कहीं ना कहीं विशेष रूप से अतिरिक्त प्रभावित होता ही है। दोस्तों, आज के अखबार में मुझे एक शब्द मिला है, नया शब्द, वो है विंज वाचिंग। देखिए, जब अक्सर मैं कहता हूं कि आपकी जो भाषा है वो निरंतर विकसित होती चली जानी चाहिए, और जो नए नए शब्द इस्तेमाल में आ रहे हैं भले ही वो लोगों की जुबान पर न चढ़े हों, लेकिन अखबारों में आ रहे हैं, किताबों में पढ़ने को मिल रहे हैं, तो उन्हें आपको अपनी शब्दावली में शामिल कर लेना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अपडेटेड है। विंज वाचिंग, यह शब्द बेसिकली OTT के दर्शकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओवर द टॉप। आप जानते हैं कि टेलीविज़न में अब इस तरह की स्थिति हो गई है, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक वेब सीरीज़ डाली गई है और उस वेब सीरीज़ के 7 एपिसोड हैं, यानी 25-25, 30-30 मिनट के 7 एपिसोड हैं। तो अब होता यह है कि आपने आज एक एपिसोड देख लिया, फिर एक दिन बाद एपिसोड देख लिया, फिर तीसरे दिन बाद एक एपिसोड देख लिया, और इस तरीके से फिर आप उस एपिसोड को पूरा कर लेते हैं, तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन विंज वाचिंग तब कहते हैं जब पता लगा कि आपने 7 एपिसोड एक दिन में खत्म कर दिया या 2 दिन में खत्म कर दिया, यानी कि आप लगातार एक ही दिन में, एक ही बैठक में कई कई एपिसोड देख रहे हैं, तो इसे विंज वाचिंग कहा जाता है। तो इस शब्द को आप चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि मीडिया आपके सिलेबस में है, तो आप इस तरीके से जब मीडिया पर बात कर रहे होंगे और अगर आपको अवसर मिले तो आप इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि किस तरीके से हमें न्याय के भारतीयकरण की जरूरत आ पड़ी है। इस विषय की शुरुआत कहां से हुई है? कुछ दिनों पहले ही यह शब्द इस्तेमाल में आ गया था कि हमारे जो अभी चीफ जस्टिस हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने अभी कुछ बातें कही थी, और जो बातें उन्होंने कही थी वे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनकी एक बात की चर्चा मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में कर चुका हूं, और वह यह थी कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो संस्थाएं हैं वो अपना विश्वास खोती जा रही हैं, जनविश्वास उनका कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के विश्वास की भी बात कही थी कि न्यायपालिका का भी विश्वास कम होता जा रहा है। उस समय उन्होंने जो बातें कही थी उनके वक्तव्यों को लेकर के आज दैनिक भास्कर ने अपना एडिटोरियल कमेंट लिखा है, जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस एडिटोरियल कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और आप जानते हैं कि जुडिशरी आपके सिलेबस का हिस्सा है और हर साल जुडिशरी पर कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, प्री में भी और मेंस में भी। लेकिन अभी मैं जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूं उसके प्री में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन मेंस में पूछे जाने की आप यूं कह लीजिए कि पूरी पूरी संभावनाएं हैं, यह हम कह सकते हैं। नई बात उन्होंने कही है न्याय के भारतीयकरण की, न्याय के सुधार की बात होती है कि हमारे यहाँ न्याय बहुत देरी से मिल रहा है, कोर्ट जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। और बकायदे आप इसे एडिटोरियल कमेंट में पाएंगे कि उन्होंने डेटा दिया है कि किस तरीके से हमारे जो हाई कोर्ट के जो कुल पद हैं 1104, बेहतर होगा कि आप इसे नोट कर लें, हाई कोर्ट के हमारे कुल 1104 पद हैं और इसमें से अभी 388 पद अभी भी खाली हैं। एक तरफ जो पोस्ट हैं वो अप्रूव्ड हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि न्यायालयों के ऊपर कितना ज़्यादा बोझ है केसेस का, और फिर हम बकायदे पोस्ट भी खाली रख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने हमारा जो कॉलेजियम है, हमारा जो एक आप यू कह लीजिए ग्रुप है, उसने 180 नामों की रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को, जिसमें से केवल 54 नाम ही क्लियर हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं देती है। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे सही मायने में न्याय की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेंगे। तो ये तो इसका एक पक्ष हुआ, लेकिन यहां जो मुद्दा है वो न्याय के भारतीयकरण का मुद्दा है। उस पर जो चीफ जस्टिस का जो कहना है, जिसके आधार पर उन्होंने भारतीयकरण शब्द का इस्तेमाल किया है, जो मैं समझ सका हूं वो ये है कि सामान्यतया जब हम न्याय देते हैं, जस्टिस क्या करते हैं कि वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, सुनने के बाद वो कानून की किताब के अनुसार न्याय देते हैं। और कई बार कुछ न्यायाधीशों ने ये बात कही भी है कि वो जानते थे कि सच क्या है, इसके बावजूद वो सच के पक्ष में न्याय नहीं दे सकते थे क्योंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता था, उनके पास सामने जो साक्ष्य है उसके आधार पर वो जजमेंट देने के लिए बाध्य थे। इसको इन्होंने उठाया है कि जब हम न्याय देते हैं या कि निर्णय सुना रहे होते हैं तो हमें उसके बकायदे मानवीय पक्ष को भी देखना चाहिए, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी हमें कुछ निर्णय लेने चाहिए। इसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने न्याय का भारतीयकरण करना कहा है। और डेफिनेटली हमारे जो कानून है वो तो उपनिवेशवादी कानून है ही, तो जब कानून ही उपनिवेशवादी होंगे तो न्याय का भारतीयकरण कैसे हो सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि टॉपिक है, मुख्य परीक्षा में मेन्स एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और निबंध की दृष्टि से भी, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस पर विचार करें। आगे अगर इस पर लेख आते हैं तो आप उनसे पॉइंट्स नोट करें और इस पर एक छोटा सा आपको नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, तो नेहा आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।